Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಮ್ಯೇನಾತಸ್ಮೈಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ನಮಃ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಪವಿತ್ರೇ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತು ಯೇ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯೂಕಿ ಆಜ್ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಾ ತಿರುಭಾವ ದಿವಸ್ ಹೈ ತೋ ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ ಉನ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಆಚಾರ್ಯೋ ಕೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ಔರ್ ತಿರುಭಾವ ಪರ್ ಉನ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಸುನ್ನಾ ಔರ್ ಉನ್ಸೆ ಕೃಪಾ ಕಿ ಯಾಚನಾ ಕರ್ನಾ ಯೇ ಭಕ್ತಿ ಮೇ ಪ್ರಗತಿ ಮಹತ್ವ. ವೈಸೆ ತೋ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಾ ಬರಸಾತೆ ಹೀ ರಹತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ವಿಶೇಷ ತಿಥಿಯೋ ಪರ್ ಉನ್ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಹಮೇ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ತೋ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯೇ ಛೇ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯೋ ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಹೈ. ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನೋ ರಘುಯುಗೋ ಶ್ರೀಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ. ತೋ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಐಸಾ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಬಚ್ಪನ್ ಸೇ ಯಾ ಜನ್ಮ ಸೇ ಭಕ್ತ ಹೈ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೇ ಇನ್ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ. ಇನ್ಕೆ ಪಿತಾ ವೆಂಕಟ ಭಟ್ ಜೊ ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆ ಬಹುತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥೇ ರಂಗನಾಥ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಶ್ರೀರಂಗಮ್ ಮೇ. ವೈಸೆ ಜೊ ರಂಗನಾಥ ಮಂದಿರ್ ಹೈ ಇಸ್ಕ ಜೋ ಆಲ್ಟರ್ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೋ ವಿಮಾನ ಕಹತೆ ಶ್ರೀ ವಿಮಾನ ಯಾ ಶ್ರೀರಂಗ ವಿಮಾನ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಏಕ ವಿಮಾನ ಕಿ ತರಹ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೇ ಭಗವಾನ್ ವಿರಾಜಮಾನ ಹೈ ಲೇಟೆ ಹುವೆ ಹೈ. ಆಪ್ ಮೇ ಸೇ ಕಿತ್ನೆ ಲೋಗ್ ಗಯೆ ಹೈ ರಂಗನಾಥ? ತೋ ಭಗವಾನ್ ವಹಾಂ ಲೇಟೆ ಹುವೆ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕೋ ವಿಮಾನ ಕಹತೆ ಹೈ. ಕೋಯ್ ಜಾನತೆ ಇಸ್ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಿಸ್ನೆ ಕಿ ಥಿ? ಇನ್ ಡಿಟಿ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಿಸ್ನೆ ಕಿ? ದಶರಥ? ನೈ ನೈ ಔರ್ ಕೋಯ್? ವಿಭೀಷಣ ಕಿ? ದರಸಲ್ ಐಸಾ ಹುವಾ ಥಾ ಕಿ ಜಬ್ ಯುದ್ಧ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ಗಯಾ ತೋ ಭಗವಾನ್ ನೇ ವಿಭೀಷಣ ಕೋ ಯೆ ಕಹಾ ಕಿ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣ ಸೇ ಬಹುತ್ ಪ್ರಭಾವಿತ ಹುವಾ ಹೂಂ, ಬಹುತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೂಂ. ಏಕ ಅಸುರ ಕುಲ್ ಮೇ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕುಲ್ ಮೇ ರಾಕ್ಷಸ್ ಹೋತೆ ಹುವೆ ಭಿ ವೈಸೆ ವೋ ಕುಲ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ಕಾ ನಹೀ ಹೈ, ಉನ್ಕಿ ಮಾತಾ ರಾಕ್ಷಸಿ ಥಿ, ಪಿತಾ ತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಥೆ. ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಐಸೆ ವಾತಾವರಣ ಮೇ ರಹಕರ್ ರಾಕ್ಷಸೋ ಕೆ ಬೀಚ ರಹಕರ್ ಭಿ ಆಪ್ನೆ ಭಕ್ತಿ ಕೋ ನಹೀ ತ್ಯಾಗಾ. ಭಗವಾನ್ ಇಸ್ಸೆ ಬಹುತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹುವೆ ಥೆ. ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಉಪದೇಶ ಹೈ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಕಲಿಯುಗ ಹೈ, ವಾತಾವರಣ ಠೀಕ್ ನಹೀ ಹೈ, ಭಕ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೋಯ್ ಭಕ್ತಿ ನಹೀ ಕರ್ ರಹಾ, ತೋ ಹಮ್ ಕೈಸೆ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ? ತೋ ಹಮೇ ವಿಭೀಷಣ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಸೋಚನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ವೋ ತೋ ಸಾರೇ ರಾಕ್ಷಸೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಥಾ, ಜಹಾಂ ವೋ ಲೋಗ್ ಸಾರೇ ಭಕ್ತಿ ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನಾ, ಭಕ್ತೋ ಕೋ ಮಾರ್ನಾ, तो ऐसे जगह पर रहकर भी वो अपनी भक्ति को बनाए रखा, और जब रावण ने उसको निकाल दिया तो सीधे श्री राम के पास गया, कहीं और नहीं गया। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं आपके समर्पण से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ देना चाहता, अब क्या मांगते हो, आप मांगिए, मैं आपको वो दूंगा। तो विभीषण ने कहा कि मैं आपको चाहता हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। देखिए, अगर कोई भगवान को प्राप्त कर ले तो फिर उसके लिए और कोई चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, लेकिन अगर और कोई चीज़ को प्राप्त करे तो उसमें कमी होगी, इसीलिए और प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे इस जगत में हम लोग धन प्राप्त करते हैं भगवान को छोड़कर, मान प्रतिष्ठा इत्यादि, वो चीज़ें संतुष्टि नहीं देती क्योंकि वो पूर्ण नहीं है, और क्योंकि पूर्ण नहीं है वो पूर्णता प्रदान नहीं करती, और क्योंकि पूर्णता प्रदान नहीं करती जीव और कामना करता है, और इसीलिए जीवन चक्र चलता रहता है क्योंकि कामना बढ़ती जाती है। जहाँ कामनाएं समाप्त हो जाए, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, कांक्षति मतलब जो इच्छा बंद कर देता, कामनाएं खत्म हो जाती है, उसको मद भक्ति लभते पराम, तो वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए ये कामनाएं बनी रहती हैं हमारे जगत, लेकिन पूर्ण नहीं होती, खुद पूर्ण नहीं है इसीलिए परिपूर्णता को प्रदान नहीं करती, लेकिन कृष्ण पूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है, और क्योंकि वो पूर्ण है इसीलिए अगर कोई कृष्ण को प्राप्त करता है तो उसको परिपूर्णता की प्राप्ति होती, फिर वो और कुछ नहीं मांगता। इसीलिए भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम ममा, एक बार जो उस धाम में पहुंच गए वो और कोई इच्छा नहीं करता, फिर उसकी इच्छा नहीं होती कि किसी दूसरे धाम में चले जाएं, फिर से थोड़ा बहुत भौतिक जगत में जाकर आए, देख कर आए कारोबार का मंदिर ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई इच्छा नहीं, वो अपना धाम में प्रवेश करते। तो इसीलिए विभीषण ने कहा कि मुझे आप ही चाहिए, तो भगवान ने कहा ठीक है। वो उनको ले गए एक स्थान पर और उन्होंने वहाँ उनको दर्शन दिए रंगनाथ जी के रूप में, वो विमान वहाँ प्रकट कराया उन्होंने, वहाँ पर एक स्थान पर बहुत बड़ा विमान था और फिर उसके अंदर भगवान ऐसे लेटे हुए थे और उसको उन्होंने प्रदान किया विभीषण को, और विभीषण ने फिर उसकी स्थापना श्रीरंग क्षेत्र में श्रृंगनाथ जी के रूप में वहाँ पर की। तो स्थापना विभीषण ने की है, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया, भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, जहाँ 7 दरवाजे हैं, और इतना ही नहीं 7 सड़कें अलग अलग जगह से उस मंदिर की ओर आती हैं। तो ऐसे बहुत सा वर्णन प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में किया है रंगनाथ जी का, या रंग श्रीरंग श्रीरंगम का। तो वहाँ पर वेंकट भट्ट रहा करते थे, आज से करीब 520 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए तो वो वहाँ रहा करते थे, और वेंकट भट्ट बड़े प्रसिद्ध थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनके घर पर रुके 4 महीना। पहली बार जब वेंकट भट्ट ने देखा चैतन्य महाप्रभु को, उनके जो शरीर के अविकार या शरीर के जो लक्षण को देखकर बड़े प्रभावित हुए सन्यासी को देखकर, और चतुर्मास का समय था, तो ये नियम होता है कि चतुर्मास के समय सन्यासी कहीं जाया नहीं करते थे। तो आज तो हमारे सन्यासी चतुर्मास में भी अमेरिका लंदन सब जगह हो जाते हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन प्रचार का है इसलिए हम लोग एक जगह बैठ नहीं सकते 4 महीना। लेकिन पहले ऐसा था कि व्यवस्थाएं नहीं थी, बारिश के समय चलना बड़ा कठिन होता था, तो इसीलिए एक स्थान पर रहकर ही वो भक्ति किया करते थे। आज भी कई सन्यासी इसका पालन करते हैं, चतुर्मास एक ही जगह करते हैं, जाते नहीं। लेकिन हमारे आंदोलन में श्रील प्रभुपाद जी ने इसको कितना महत्व नहीं दिया, क्योंकि हमारा आंदोलन प्रचार का है, 4 महीने सब प्रचार बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो सन्यासी जाते नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु वहीं रुके। तो वेंकट भट्ट ने उनसे कहा कि आप मेरे घर पर रहिए। तो 4 महीना, सोचिए एक साथ 4 महीना चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर रहे, रोज अलग अलग जगह प्रसाद के लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ इतने ब्राह्मण हैं कि हर रोज कोई ना कोई चैतन्य महाप्रभु को बुलाते थे कि आप मेरे घर पे आइए प्रसाद के लिए। और इतना हुआ कि 4 महीने तक चैतन्य महाप्रभु हर एक के घर में भी जा रहे हैं तो भी लोग पूरे सबके घरों में नहीं जा पाए। और भी लोग अभी बुलाना चाहते थे, लेकिन फिर 4 महीना हो गया था तो चैतन्य महाप्रभु चले गए। तो सारे ब्राह्मण बुलाना चाहते थे, अब मेरे घर पर आइए, अब मेरे घर पर आइए। ये एक नियम है, सन्यासियों को गृहस्थ घर पर बुलाते हैं प्रसाद के लिए। इसलिए नहीं कि सन्यासियों को आवश्यकता है, सन्यासियों को खाने नहीं मिलता है इसीलिए गृहस्थ बुलाते हैं। गृहस्थ अपने उद्धार के लिए बुलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बार बार आकर प्रार्थना किया करते थे इसलिए कि बस मेरे घर पर आए, प्रसाद लें, क्योंकि ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जो वैष्णवों को घर पर बुलाना, उनको प्रसाद खिलाना, कीर्तन होना, बस ये गृहस्थों का कर्तव्य है। केवल उनको ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करने वो तो है ही, लेकिन ये कर्तव्य भी है गृहस्थ जीवन का। श्रील प्रभुपाद के पिताजी इसका पालन करते थे, आप सब जानते हैं। बाहर जाकर साधुओं को पकड़ कर लाते थे, प्रसाद देते थे और फिर कहते थे मेरे लड़के को आशीर्वाद दो, राधा रानी का भक्त बने। कृष्ण का नहीं बोलते थे, राधा रानी की सेवा करे, राधा रानी का भक्त बने। तो पहले तो हर कोई करता था, ये तो अब कलयुग बढ़ गया है और हम लोग आधुनिक हो गए हैं। तो आधुनिक समय में लोग अपने माता पिता को खाना नहीं देते हैं, फिर वो बाहर के सन्यासियों को बुलाने तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाहर के देशों में कई जगहों पर ये नियम है, आप लोग गए नहीं हैं इसलिए आपको पता नहीं, कि लोग आपको खाने पर बुलाएंगे, डिनर पर, कि आप आज का या कल का डिनर हमारे साथ करेंगे। ठीक है, आप तैयार होकर उनके घर जाएंगे तो घर में वो तैयार बैठे होंगे, वो भी आप आएंगे, बिठाएंगे आपको, थोड़ा कुछ पिलाएंगे, जो हम लोगों को नहीं चर्चा करनी चाहिए, तो थोड़ा पिलाएंगे। उसके बाद दोनों उठ के रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, वहाँ पर खाना पीना होगा, पैसा ये दे देंगे, बस यही है वहाँ का नियम। कई जगहों का घर पर बनाकर खिलाना उनके लिए बड़ी विचित्र बात है, सोचने के लिए। ऐसे बोल देंगे तो पत्नी अगले दिन तलाक दे देगी। घर पर बुलाकर खिलाना, इतना 4 लोगों के लिए बनाना नहीं हो सकता। भारत में अभी भी सभ्यता है इसीलिए बचा हुआ है, मतलब आप किसी को घर पे बुलाओ तो पत्नी तलाक नहीं देती है, वहाँ नहीं। तो वैष्णवों को बुलाना एक प्रथा है, चैतन्य महाप्रभु को बुलाया करते, लेकिन 4 महीने रहे इन्हीं के घर, वेंकट भट्ट के घर। और इनके जो लड़के थे गोपाल भट्ट, बहुत छोटे थे उस समय, तो ये बहुत प्रभावित थे चैतन्य महाप्रभु से। दरअसल चैतन्य महाप्रभु ने इनको अपने नवद्वीप रूप का दर्शन दिया था। जब आए थे तब नवद्वीप का दर्शन नहीं दे सकते थे, क्योंकि सन्यासी थे, केश वगैरह काट चुके थे और एक सन्यासी के वेश में रह रहे थे। लेकिन उन्होंने ऐसा वर्णन है कि एक दिन गोपाल भट्ट उनके चरणों में गिर गए, उठे ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या चाहते, फिर भी नहीं उठे, बहुत बोला। तब उन्होंने कहा कि मैं आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कर लो, बोले नहीं नहीं, आपके नवदीप के रूप का। तो फिर उस समय उन्होंने दर्शन दिए थे पूरे पंचतत्व, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास, गदाधर, सब पूरे पंचतत्व का दर्शन उन्हें हुआ था। बहुत प्रसन्न हुए थे और चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा गोपाल भट्ट पर की कि चैतन्य महाप्रभु ने बुलाते, अपने पास बिठाते और अपना उच्चिष्ट उन्हें दिया करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिया करते थे। तो ऐसे बहुत प्रेम उनके अंदर था चैतन्य महाप्रभु के लिए। 4 महीने हो गए, 4 महीनों में बहुत चर्चा होती थी। वेंकट भट्ट से एक बहुत प्रसिद्ध चर्चा, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया है, चैतन्य महाप्रभु ने की कि लक्ष्मी नारायण की भक्ति या कृष्ण राधा कृष्ण की भक्ति, तो लक्ष्मी जी श्रेष्ठ हैं या क्या इत्यादि बहुत चर्चा हुई, बहुत सुंदर वो चर्चा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी लक्ष्मी अगर सती स्त्री है तो मेरे कृष्ण के रासलीला में क्यों आना चाहती है, उसको नारायण के साथ रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सुंदर संवाद है, किसी दिन उस पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हुई, 4 महीना पूरा हो गया और फिर गोपाल भट्ट ने देखा कि अब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो वो मूर्छित हो गए, सहन नहीं। बाकी सारे घर वाले भी रो रहे थे। देखिए प्रेम, चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी है, उनका कोई लेना कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इतना प्रेम दिया उनको, उनको इतना प्रेम हो गया था कि वो सब रोने लगे, वो जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, उन्हें तो जाना था, तो फिर वो चल दिए। तो उस समय गोपाल भट्ट भी इनके पीछे पीछे भागे कि मैं भी आपके साथ ही आऊँगा, छोटा बालक, लेकिन उनका नहीं जाऊँगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया और उनको कहा कि तुम यहाँ रहो, जब तक तुम्हारे माता पिता हैं उनकी सेवा करो और फिर उसके बाद तुम वृंदावन आ जाना और वहाँ पर आगे तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय तो गोपाल थे तो रहे, लेकिन सदैव वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनका आदेश था कि अपने माता पिता की सेवा करो। ये आदेश चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए दिया क्योंकि वो लोग बहुत बड़े वैष्णव थे, अगर वो वैष्णव नहीं होते तो शायद चैतन्य महाप्रभु ये आदेश नहीं देते। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये आदेश नहीं दिया, हमको घर छोड़वा दिया, क्योंकि उनके माता पिता विरोध कर रहे थे भक्ति का, धन बहुत धनवान, लेकिन ये तो वैष्णव थे, परम वैष्णव। तो चैतन्य महाप्रभु का यहीं रहो, इनकी सेवा करो। तो उनके अंतिम समय तक गोपाल भट्ट ने उनकी सेवा की। गोपाल भट्ट ने अपने चाचा से, वेंकट भट्ट के भाई, उनसे दीक्षा ग्रहण की थी, जिनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। वेंकट भट्ट के भाई हैं वो, प्रबोधानंद सरस्वती, उनसे दीक्षा ग्रहण की। और फिर हमेशा चिंतन करते रहते कब मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं। तो वेंकट भट्ट का अंतिम समय आया, उनके माता पिता अंतिम क्षणों में थे, तो उन्होंने बुलाया गोपाल भट्ट को और उससे कहा कि देखो अब तुम सीधे वृंदावन जाना, चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और कोई कार्य नहीं करना। देखिए कैसे महान माता पिता, क्योंकि वैष्णव है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है बहुत समय हो गया, अब हमारा कोई आगे देखने वाला नहीं, वंश चलाने वाला नहीं, तो तुम विवाह कर लेना और थोड़े संतान उत्पन्न करना ताकि वंश चलता रहे, नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं, सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ, जीवन समर्पण करो। तो गोपाल भट्ट उसके बाद जब माता पिता नहीं रहे तो फिर वो वृंदावन आए सीधा, और आए तो उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब इंतजार कर रहे थे उनका कि आने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु ने पहले से कह दिया था उनको कि आएंगे। तो उस समय तक जब गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले थे बचपन में, तब तक कोई और गोस्वामी मिले नहीं थे चैतन्य महाप्रभु से, पहले गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने वाले, भले छोटे बचपन में किया लेकिन पहले हैं। उसके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो बहुत बाद में मिले चैतन्य महाप्रभु को। तो जब वो पहुंचे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पहले से वहां पर आ चुके थे, उन्होंने स्वागत किया गोपाल भट्ट गोस्वामी का और तुरंत एक पत्र लिखा चैतन्य महाप्रभु को। महाप्रभु उस समय पुरी में थे तो तुरंत पत्र लिखा कि गोपाल भट्ट आ गए हैं, अब क्या आदेश है उसके लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब वो पत्र पढ़ा तो बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने वहाँ से गोपाल भट्ट के लिए कॉपिन, अपना कॉपिन भेजा। और तो चैतन्य महाप्रभु ने ये संदेश दिया कि अब इसको संन्यास लेना चाहिए। कॉपिन धारण करने का अर्थ है कि अब संन्यास, अब फिर पीछे नहीं देखना। तो इसीलिए उन्होंने भेजा और जिसको पाकर गोपाल भट्ट बहुत प्रसन्न हुए और फिर वो वहीं पर रहे। गोपाल भट्ट का जीवन करीब 75 वर्ष का था, 75 वर्ष तक वो जीवित रहे, उनकी आयु थी और उसमें से ज़्यादा समय उन्होंने वृंदावन में बिताया, विशेषतः राधा कुंड के तट पर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद चैतन्य चरितामृत लिखना चाहते थे, तो वृंदावन में इन गोस्वामियों के पास वो गए और सबसे आशीर्वाद लिया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अन्य गोस्वामियों से। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए तो उन्होंने कहा मैं आपको बहुत आशीर्वाद दूंगा, बहुत प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छे इसको लिख सके, इस ग्रंथ को पूरा कर सके, लेकिन एक शर्त है। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा सारे ग्रंथ में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, मेरे विषय में नहीं लिखना, बाकी आप जो चाहिए लिखिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वीकार करना पड़ा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में केवल इनका नाम है, बस ये छह गोस्वामी थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में कोई वर्णन नहीं है चैतन्य चरितामृत में, क्या क्या उन्होंने किया वृंदावन में, कौन से ग्रंथ लिखे, क्या उनकी लीलाएं हुई। स्वाभाविक के सारे गोस्वामियों की हुई हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये नम्रता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जानते थे कि ये जो चैतन्य चरितामृत है आगे चलकर वैष्णवों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा, और आज है भी, हम लोग देख रहे धीरे धीरे आगे जब समय बढ़ेगा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, भक्त इसको बड़े आनंद से पढ़ेंगे। आज तो केवल इस्कॉन या गौड़िया मठ में पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा जगत में। तो वो जानते थे कि आगे चलकर ये श्रेष्ठ ग्रंथ होगा, इसको सब पढ़ेंगे, लेकिन उनकी नम्रता देखिए, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, मेरा वर्णन नहीं करना, ये भक्त है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतना महान ग्रंथ लिखने वाले हैं, आगे चलकर हजारों लाखों करोड़ों भक्त पढ़ेंगे, उन्हें पता होना चाहिए मैंने क्या किया, गोपाल भट्ट ने क्या किया। और तो और, हम लोग सब जानते हैं कि जीव गोस्वामी ने षड् संदर्भ लिखे, सही है, दरअसल गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखे, उनका पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा। इसीलिए जीव गोस्वामी अपने संदर्भों की शुरुआत में लिखते हैं कि एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण भक्त वैष्णव, उन्होंने इसको लिखा है, मैं केवल उसको ठीक ठाक कर रहा हूं, उन्होंने ऐसे ही लिख दिया था, मतलब ऐसे मतलब लिखा वही था लेकिन ठीक से क्रमबद्ध नहीं लिखा था, मैं उसको केवल क्रमबद्ध कर रहा हूं। ये जीव गोस्वामी ने खुद लिखा, तो खुद कहते कि मैं नहीं लिख रहा हूं, इस शर्त से पहले से लिख चुके हैं। तो वो थे गोपाल भट्ट, वहां भी उनका नाम नहीं, जीव गोस्वामी को उन्होंने नाम नहीं है। लेकिन देखिए ये वैष्णव की महानता देखिए, चैतन्य चरितामृत में कोई वर्णन नहीं, षट संदर्भ जो आज जीव गोस्वामी के ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है और दर्शन शास्त्रियों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज तक लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, जीव गोस्वामी को सब गुणगान करते हैं कि क्या लिखा है, और जीव गोस्वामी स्वयं लिखते हैं कि पहले से लिख चुका है, मैं केवल उसको क्रमबद्ध कर रहा हूं। तो ये थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। आज तक लोग नहीं जानते कि जीव गोस्वामी ने लिखा या उन्होंने लिखा। तो ये थे गोपाल। हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी का ग्रंथ है, उसको भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत उनको मदद की लिखने में, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम नहीं है। हरिभक्ति विलास ये सनातन गोस्वामी के नाम पर है, सनातन गोस्वामी ने लिखा। उन्होंने एक ही दो ग्रंथों का उन पर जिनका लिखा जिसमें उनका नाम है, शतसार क्रिया या शतक्रिया सार दीपिका, ऐसे कोई ग्रंथ है, बस उतना ही लिखा है उन्होंने जिसमें उनका नाम है, अन्यथा कहीं नाम नहीं है। तो देखिए गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या सिखलाते हैं। आज अगर हम उनका वर्णन करने जाएं तो कुछ है ही नहीं, क्या किया उन्होंने इतने वर्ष वृंदावन में रह के, कोई वर्णन नहीं, चैतन्य चरितामृत में नहीं किया, कहीं नहीं, क्या क्या हो। जैसे हम लोग रूप गोस्वामी का करने जाएं तो बहुत सारी लीलाएं बताते हैं, ऐसा हुआ उन्होंने एक वैष्णव को देखा, एक समय राधा रानी ने उनको ये ला के दिया, वो बहुत सारा कुछ। गोपाल भट्ट गोस्वामी कुछ नहीं, ये वैष्णव, अर्थात इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी वैष्णव नहीं है, ये उनकी नम्रता थी कि कहीं पर भी उन्होंने अपने इस वर्णन को आने नहीं दिए। तो इसीलिए हमें भी ये सीखना चाहिए कि अगर भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो ये कला सीखनी चाहिए। आज के दिवस पर हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे उनके हृदय में अपने को बाहरी, अपने को प्रकट कराने की, अपने को श्रेष्ठ बनाने की, अपना गुणगान कराने की कोई इच्छा नहीं थी, और हम सब में उल्टा है, हम तो सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह मेरा गुणगान हो, बाकी सब पीछे रहे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा तो भी नाम नहीं लिखा, हम तो नहीं लिखते तो भी चाहते कि मेरा नाम आ जाए। अगर कोई ग्रंथ नहीं भी लिखा हमने, अगर कोई आके कहे प्रभु जी आपका पेन लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में, मैंने लिखा। लेकिन आज हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में भी ये भावना आए कि हम भी मान प्रतिष्ठा के पीछे ना भागें, हम भी ऐसे कृष्ण की, क्योंकि ये कृष्ण को प्रसन्न करता, ये वैराग्य है और ये असली वैराग्य है। कभी कभी व्यक्ति वैरागी हो जाता है, लेकिन वैरागी होकर भी प्रसन्न उसको इच्छा रहती कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, बहुत बड़ा गुरु हो जाऊं, बहुत बड़ा सन्यासी कहलाऊं। तो एक दृष्टि से वैरागी है लेकिन सच्चा नहीं है, प्रसन्न नहीं करता कृष्ण को। जैसे चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, महाप्रभु र भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीति है न गौर भगवान। गौरांग महाप्रभु प्रसन्न होते हैं भक्तों के हृदय में वैराग्य को देखकर, जहां देखी प्रीति है, प्रीति है ना, उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है चैतन्य महाप्रभु को। किस लिए? महाप्रभु र भक्त गणेर वैराग्य प्रधान। हमारे सारे कार्यों में प्रधानता वैराग्य की चाहिए। तो अगर कोई बाहरी दृष्टि से कपड़े बदल लेता है, वैरागी हो जाता है, लेकिन इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, बहुत बड़ा सन्यासी हो जाऊं, हजारों लोग मुझे दंडवत करें, हजारों मेरे शिष्य हों, ये वैराग्य नहीं है। इसीलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भावना हमारे मन में आए। वो जानते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का इतना महान ग्रंथ होगा आगे चलकर, अपना वर्णन नहीं करा रहे, षट संदर्भ कितने प्रसिद्ध होंगे, अपना नाम नहीं लिखवाया। आज विद्वानों के जो चर्चा होती है उसमें षट संदर्भों को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई आज तक जो भी जीव गोस्वामी ने लिखे, जीव गोस्वामी ने करीब 5 लाख श्लोकों की रचना की और आज तक एक भी श्लोक का कोई खंडन नहीं कर पाया उनके, ये उनकी विद्वता है। तो गोपाल भट्ट जानते थे ऐसा होगा लेकिन नाम नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा आज के दिवस पर हम उनसे स्वीकार कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं कि जो भी भावनाएं हमारे, हम जो भी काम करते हैं, देखिए छोटा छोटा काम करते हैं, हमें इच्छा हो जाती है कि कोई हमें श्रेष्ठ कहे, कोई हमारा गुणगान कर दे, बस छोटी छोटी चीजों में। ये तो बहुत बड़ी चीज थी कि ग्रंथ में अपना नाम नहीं आने देना, लेकिन हम लोग तो छोटी छोटी चीज में जाते कि कोई मुझे श्रेष्ठ कहे, महान कहे, गुणगान करे। लेकिन भक्ति में जितना हम अपना गुणगान कराना चाहते हैं उतना कृष्ण से दूर चले जाते हैं, क्योंकि अपना गुणगान कराना मतलब हमारे अहंकार को बढ़ावा देना, और भक्ति प्रारंभ होती है अहंकार को तोड़ने से। इसीलिए दास कहा जाता है, दास होना मतलब अहंकार को तोड़ना, कोई श्रेष्ठता नहीं, दास में क्या श्रेष्ठता। तो इसलिए जितना हम लोग अपने लिए कार्य करते हैं, अपने अहंकार को बढ़ाते हैं कि इससे मुझे प्रसन्नता हो, मुझे नहीं कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसिद्धि। प्रभुपाद ने कार्य किया कृष्ण की प्रसिद्धि के लिए, और कृष्ण ने कार्य किया प्रभुपाद की प्रसिद्धि के लिए, उन्होंने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। माधवेंद्रपुरी हम लोग कथा सुन रहे थे जब रेमुना गए थे, तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, वो तो प्रसिद्धि नहीं चाहते थे, भाग गए उस स्थान से, रेमुना से चले गए कि अरे अरे अभी कल को सबको पता चलेगा कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चुराई है तो मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगा। रातों रात भाग गए वहां से, निकल गए कि कल कोई पूछे नहीं आकर। तो उन्होंने प्रसिद्धि चाही गोपीनाथ जी की, गोपीनाथ प्रसिद्ध हो मैं नहीं, लेकिन गोपीनाथ ने क्या किया, पुरी पहुंचने के पहले ही सारी व्यवस्था सब जानते थे। हाँ माधवेंद्रपुरी, तो इसीलिए यही प्रभुपाद के साथ हो, प्रभुपाद ने कोई प्रसिद्धि की कामना नहीं की। अगर प्रसिद्धि की कामना होती तो वृद्धावस्था में जहाँ इतना कठिनाई है वो अमेरिका थोड़ी जाते, वो गए इसीलिए कि कोई प्रसिद्धि की कामना नहीं थी, केवल कृष्ण की सेवा। और कृष्ण ने प्रसिद्धि दिलाई। ऐसा कौन और भक्त है जिसको इतने थोड़े समय में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि, और आज भी बढ़ रहा है उनका आंदोलन। तो इसीलिए हमें ये भावना आचार्यों से ग्रहण करनी चाहिए। आज के दिवस पर विशेषता उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय से भावना निकल जाए, हर चीज में श्रेष्ठता। कीर्तन करो तो लगता है श्रेष्ठता, बोले तो लगता है श्रेष्ठता, अल्टर सेवा श्रेष्ठता, कुकिंग श्रेष्ठता, क्या लोग गुणगान करें मेरा। लेकिन इनसे सीखिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी से। आज ही नहीं, आगे आने वाली कोई पीढ़ी उनका गुणगान नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ है ही नहीं गुणगान करने के लिए। बस यही सब थोड़ा पता है कि किसके बच्चे किसके लड़के थे, जितने महाप्रभु से मिले तो वृंदावन आ गए और बस वृंदावन में रहे, ज्यादातर राधा कुंड के निकट। वृंदावन में क्या किया कुछ पता नहीं। तो ऐसे हमें सीखना चाहिए। हाँ, कुछ भक्तों ने कहीं लिखा हुआ है थोड़ा बहुत उनके विषय, लेकिन ऐसे विस्तार से प्रमाणिक ग्रंथों में नहीं है। तो ऐसे बताते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी की सेवा करने वाली अनंग मंजरी है। कई स्थान पर गुण मंजरी कहा गया है इन्हें, लेकिन ज्यादातर इन्हें अनंग मंजरी के नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिक जगत में इनका स्वरूप अनंग मंजरी का है। ये जितने भी हमारे आचार्य हुए, जितने भी गोस्वामी और आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, ये ज्यादातर सब मंजरियां हैं। मंजरियां आप जानते क्या होता है? तुलसी मंजरी नहीं। कृष्ण की लीला में राधा कृष्ण हैं, फिर उनको सहयोग करने के लिए उनकी सखियां हैं, और सखियों को सहयोग करने के लिए जो छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं उनको मंजरी कहते हैं। इनकी उम्र 10 से 11 वर्ष बस इतनी ही रहती है, 10 11 वर्ष 12 वर्ष, सदैव बढ़ती नहीं है कि हर साल वो 12 13 के हो गए, चलो वो 12 ही रहती, 10 ही रहते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, इनकी उम्र है शाश्वत उम्र 10.5 साल फिक्स। कमल मंजरी नाम, कमल मंजरी है और नीले रंग के वस्त्र धारण करती है। ये सब उन्होंने अपने भजन में अपने बारे में बता दिया कि भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी हैं और 10.5 वर्ष उनकी उम्र है। तो ऐसे ही मंजरियां होती हैं। और मंजरियां जब राधा और कृष्ण की अंतरंगा लीलाएं होती हैं तो सखियां नहीं रह सकती, लेकिन मंजरियां सेवा के लिए रहती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बालिकाएं हैं 10 साल 10.5 साल की। इसलिए वो भक्ति के गूढ़ रहस्यों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वे लोग आते हैं आचार्यों के रूप में। फिर वो चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हों, फिर वो चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हों, फिर वो चाहे नरोत्तम दास ठाकुर हों, फिर वो चाहे गोस्वामी हो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं। तो ऐसे सारी मंजरियां आचार्यों के रूप में आकर भक्ति के सर्वोच्च ज्ञान को प्रदान करती हैं, उस ज्ञान को जिसको प्रत्यक्ष देखते हैं। तो इसी तरह गोपाल भट्ट गोस्वामी भी अनंग मंजरी हैं, जो इस जगत में आए केवल कुछ ज्ञान प्रदान करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, और अपने आचरण से एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमको सिखला कर गए कि हमें मान सम्मान की कामना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, प्रतिष्ठा की कामना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपने नाम के लिए जीवित नहीं रहना चाहिए, कृष्ण नाम के लिए जीवित रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, लोकनाथ गोस्वामी ने भी यही मांगा था कि मेरा नाम नहीं लिखना तब आशीर्वाद दूंगा, उनका भी नाम नहीं, उनके बारे में भी ज्यादा वर्णन नहीं। हाँ, हमारे क्रियाकलापों को देखकर बाकी लोग इंस्पायर हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये भावना अच्छी नहीं है। उन्हें ये होना चाहिए कि वो कार्य करेंगे, कृष्ण अपने आप उसका प्रचार करेंगे। जैसे प्रभुपाद ने कार्य किए, कहीं बैठकर 26 सेकंड एवेन्यू में या एक छोटे से पार्क में भगवान ने सारी दुनिया में प्रसार करा दिया। तो भक्त के लिए भावना होती है कि हाँ, ये सही है कि मेरे क्रिया कभी कभी कोई स्थिति पर होने के कारण उसको ऐसा आचरण करना होता है। जैसे अगर कोई गुरु है, कोई अथॉरिटी है, तो उसको ऐसा आचरण करना है ताकि देखकर बाकी लोग उसको वैसे आचरण करें। लेकिन उसकी कामना ये नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रसिद्ध हूँ। आचरण कराने के लिए ठीक है, वो अपना आचरण अच्छा लगे, अपने आप लोग देखकर उसके आचरण की तरह, अगर वो स्थिति पर है, अगर वो गुरु है, कोई अथॉरिटी है, तो ऑब्वियसली लोग उसका आचरण देखकर पालन करेंगे। लेकिन अगर उसकी ये कामना हो जाए कि मैं सबको दिखलाऊं, हजारों लोगों को दिखलाऊं, नहीं, उसको जैसा अपना आचरण करना है, फिर एक व्यक्ति देखे, 50 देखे, 50,000 देखे, 1,00,000 देखे, लेकिन उसको अपना आचरण बस रखना है, कामना ये नहीं करनी है। हाँ, कभी कभी एक गुरु के रूप में, एक अथॉरिटी के रूप में अगर उसको करना पड़े, मान लीजिए उनके 10,000 शिष्य हैं, उनको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना है, वो एक अलग बात है, वो भी भगवान की सेवा हेतु, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं। तो जब हम दूसरों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्य करें, तो केवल ये उद्देश्य हो कि इससे ये लोग भक्ति में आगे बढ़ें, मैं प्रसिद्ध हूँ इसलिए नहीं, तो वो एक अलग बात है। वो कब होता है, जब आप ऑलरेडी प्रसिद्ध हो चुके, 10,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो तब ठीक है, लेकिन अभी कोई है नहीं फॉलो करने के लिए, हम जाकर कुछ करें। लोग करते हैं ना, कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे लोग देखें, अरे हाँ, कभी कोई, आप सोचो कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ, कुछ तो करना है, बिल्डिंग पर चढ़ जाओ, चिल्लाओ मैं कूदने वाला हूँ, हाँ सब लगा के देखेंगे। या भक्ति में हम लोग सोचे कि कुछ ऐसा करूँ मैं कि जिससे मैं प्रसिद्ध हो जाऊँ। जैसे मान लीजिए आपको एक सेंटर चलाने को दे दिया, आप बोले इस सेंटर को मैं इतना बड़ा बनाऊँ, लोग बोले वाह, केवल आप ही कर सकते थे और कोई नहीं। ये गलत भावना है। हमें करना चाहिए, मैं सेंटर को इतना आगे बढ़ाऊँ कि सारे लोग कृष्ण से जुड़े, कृष्ण भक्त बने, ये भावना सही है। लेकिन भावना हमारी क्या आ जाती है बीच में, ठीक है कृष्ण का तो नाम हो रहा है, लेकिन साथ में मेरा भी आना चाहिए, मंदिर किसने बनाया, ये तो जरा सा था, किसने बड़ा किया, ये भावना गलत है। ठीक है, यस दिनेश, कोई प्रश्न? आपने हाथ उठाया था ना, हो गया, और कोई प्रश्न? हाँ, वो एक पास्ट टाइम था, वो रह गया, राधा रमन जी का प्राकट्य, वो भी लिखा गया क्योंकि राधा रमन जी का प्राकट्य के कारण, नहीं तो वो भी लिखा नहीं जाता इनके बारे में। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक समय एक स्थान पर गए, प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर एक किसी ब्राह्मण के घर पर गए, वो ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने बड़ी प्रार्थना की गोपाल भट्ट गोस्वामी का, ठीक है तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर मेरा पुत्र हुआ तो पहला पुत्र मैं आपके पास भेज दूंगा, आपको समर्पण कर दूंगा। गोपाल भट्ट को से ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, चले गए। और फिर उसके बाद आगे वो गए गंडकी नदी में, नेपाल में है ये, जहाँ पर शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं, और ये बड़ा फेमस पास टाइम है, वो कमंडलू में अपना जल भर कर अर्पण कर रहे थे, उसमें शिलाएं आ गई, तो उन्होंने सोचा अरे ठीक नहीं है, मैं क्या करूँगा, वापस डाल दिया, फिर किया, फिर आ गए, फिर डाल दिया, तीसरी बार आया, तो उन्होंने सोचा भगवान की इच्छा है, तो 12 शिलाएं थी उनके पास, शालिग्राम शिला 12, तो उसको लेकर वो हमेशा उनकी सेवा किया करते थे। लेकिन हृदय में एक इच्छा थी कि भगवान के विग्रह की भी मैं सेवा करूँ, श्रृंगार करें, क्योंकि शालिग्राम शिला को क्या श्रृंगार करेंगे, क्या कपड़े पहनाएंगे, क्या गहने पहनाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान है, सेवा कर रहे थे, तो इच्छा थी। तो एक समय एक बहुत अमीर व्यक्ति आए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ भगवान की सेवा के लिए देना चाहता हूँ, तो उन्होंने बहुत धन दिया, कपड़े दिए भगवान को ड्रेस के लिए। गोपाल भट्ट देख रहे ड्रेसिंग किसको करूँ मैं। तो उनके हृदय में इच्छा थी, तो ऐसे एक दिन खा पी कर थोड़ा रेस्ट सो गए रात को, तो सुबह उठे और गए स्नान करके आए नदी में। फिर शालिग्राम का अभिषेक करने के लिए जब उन्होंने खोला तो देखा कि एक शिला, उनमें से 12 शिलाएं थी, उनमें से एक शिला विग्रह का रूप ले लिया है उसने। तो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने फिर सबको बताया, सब लोग आए, तो वहाँ जो उपस्थित सब गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी इत्यादि, उन्होंने नाम दिया राधा रमन देव। राधा रमन जी आज भी वृंदावन में है, मूल विग्रह। आप में से कितने लोग राधा रमन मंदिर गए हैं वृंदावन? अच्छा, और कितने लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि में गए हैं? एक ही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहा है, जस्ट राधा रमन देव जी के पीछे है। राधा रमन देव जी के पीछे है, लेकिन किसी को ऐसे ज्यादा पता ही नहीं। देखिए अभी भी समाधि है, वहां पर भी कोई ज्यादा नहीं जाते, लोगों को पता भी नहीं है। वहां के लोकल लोगों को सबको पता है, लेकिन बाहर वाले जाते हैं राधा रमन जी के दर्शन किए चले गए, बस समाधि पीछे ही। तो ऐसे राधा रमन जी प्रकट हुए, बहुत सुंदर विग्रह था उनका, और आज भी हम लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत सुंदर वो विग्रह है पूरा शालिग्राम का। तो ऐसे वो सेवा कर रहे थे, तो करीब 10 वर्ष निकल गए उस घटना को, जब एक बालक, जब एक ब्राह्मण को उन्होंने कहा था कि आपके घर लड़का होगा। एक दिन वो वापस आए तो देखा एक लड़का बैठा हुआ है उनके द्वार पर। तो जैसे ही वो गए, उसने उठकर दंडवत प्रणाम किया, तो उन्होंने पूछा कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा मैं उस ग्राम में रहता हूँ, वहाँ से आए। अच्छा, कौन तुम्हारे पिताजी? उसने नाम बताया। तो यहाँ क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा कि उन्होंने आपको वचन दिया था कि अपने पहले पुत्र को वो आपको दे देंगे, इसीलिए मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इस लड़के का नाम था गोपीनाथ, तो इसीलिए आपकी सेवा में भेजा है। तो वो तो भूल चुके थे गोपाल भट्ट को, लेकिन जब भेजा तो फिर उन्होंने उनको राधा रमन जी की सेवा में लगाया, उसको दीक्षा दी और राधा रमन जी की सेवा करो। तो फिर वो गोपीनाथ नाम ऐसे ही रखा उसका, गोपीनाथ पंडित हो गया, गोपीनाथ आचार्य। तो वो उसने सेवा की, और ऐसे कहते कि तब से लेकर जीवन भर मृत्यु तक वो राधा रमन जी की सेवा कर रहा था। उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी था। उसका एक भाई था, छोटा भाई, उसको उसने दीक्षा दी गोपीनाथ ने, और फिर उसने आगे चलकर उसके बच्चों ने सेवा की राधा रमन जी की। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को शिलाएं मिली थी जिनसे राधा रमन जी प्रकट हुए। ठीक है, और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? पहले के पिताजी कितने अच्छे हुआ करते थे ना, वो तो भूल गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी भेजा, जाओ समर्पण करो। अभी तो करते हैं तो खींच कर ले जाते हैं वापस। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।